ओम शांति। राजयोग के इस प्रथम सत्र में राजयोग का मुख्य आधार स्वयं की पहचान, क्योंकि योग माना ही एक परमात्मा के साथ का संबंध, तो उसके लिए स्वयं को जानना भी जरूरी है और उस ईश्वर पिता को जानना समझना भी आवश्यक है। श्रीमद् भगवद् गीता के अंदर जब अर्जुन जैसा वीर योद्धा भी महाभारत के युद्ध के समय दिल शिकस्त हो जाता है, अपने शस्त्र छोड़ देता है और भगवान से मना कर देता कि ये युद्ध मैं नहीं करना चाहता हूं, तो उस समय सर्वप्रथम भगवान ने भी उसको कौन सा ज्ञान दिया? स्वयं का परिचय दिया, आत्मा की यथार्थता के बारे में बताया और उस यथार्थ ज्ञान से ही उनके अंदर ऐसी हिम्मत और ऐसी शक्ति भरी जिससे वो युद्ध करने लिए तैयार हो गया। कई बार ये भी हम देखते हैं अपने जीवन में कि जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर समय व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है और उस संघर्ष में चलते चलते कभी कभी वो भीतर से टूट जाता है, हारने का अनुभव करने लगता है और उस वक्त ऐसा दिल शिकस्त हो जाता, सोचता है कि अब आगे संघर्ष नहीं करना है। ऐसे समय पर परमात्मा भी हमें आत्मा की यथार्थता का ही ज्ञान देते हैं और जैसे श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो योग सिखाता हूं जिससे कि तुम राजाओं के राजा बन जाओगे। राजाओं के राजा अर्थात पहले स्वयं की इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना, और जिसने इंद्रियों पर राज्य प्राप्त किया है वो मन को भी सहज जीत सकता है। तब कहा जाता मन जीते जगत जीत, जिसने मन को जीता है उसने जगत को जीता बराबर है। ठीक इसी प्रकार अगर योग सिखाया भगवान ने तो वो कौन सा योग था? क्योंकि योग शब्द सुनते ही आज के युग के अंदर मनुष्य के मन के अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? वो यही सोचता है कि योग माना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, कोई आसन करने होंगे। लेकिन गीता में भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी योगासन या कोई एक्सरसाइज नहीं सिखाई, तो इसका मतलब इसका कोई और भाव भी है जो बहुत ऊंचा भाव है और वो है एक आध्यात्मिक भाव, कि जिस प्रकार वियोग माना अलग होना तो योग माना जोड़, संबंध या मिलन होना। मनुष्य का संबंध इस संसार में अनेकों के साथ रहता ही है। जब हमारा संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहते हैं भौतिक योग है। जब मनुष्य का संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता है तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। जब मनुष्य का संबंध मनुष्य के साथ है और किसी व्यक्ति ने समय पर कोई सहयोग दे दिया तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। एक और स्तर भी है जहां मनुष्य का संबंध इष्ट देवी देवताओं के साथ होता है और किसी के जीवन में अगर कोई दैवी कृपा अनुभव होती है तो कहते हैं इसके जीवन में एक दैवी योग है। परंतु राजयोग माना एक सर्वश्रेष्ठ योग आत्मा का पिता परमात्मा के साथ, और ये योग संभव तभी है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो। वैसे तो हम सभी जानते हैं मानते हैं कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं। उसके बाद क्या जानना है और उसको जानने से क्या फर्क पड़ेगा? कई बार कई लोगों के मन के अंदर यही एक बात होती है कि आत्मा का ज्ञान अगर है या नहीं है क्या फर्क पड़ेगा हमारे जीवन में, हमारा जीवन तो चल ही रहा है ना, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? चलो आत्मा को मान लिया, स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी क्या फर्क पड़ेगा? और अगर नहीं माना तो जीवन में क्या नुकसान हो जाएगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, विशेषकर जीवन की क्वालिटी के अंदर। कैसे? तो ये जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये शरीर माना ही पांच तत्व, और इसीलिए जीवन जीने के लिए शरीर को वही पांच तत्व चाहिए। आज एक भी तत्व कम हो जाए तो जीवन में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जीवन के अंदर एक बेचैनी का अनुभव करेंगे। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अगर नहीं है तो उसके बदले में दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा, ऑक्सीजन ही चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। इसी तरह पानी चाहिए जीने के लिए, पानी अगर नहीं है तो उसके बदले में डीजल केरोसिन पेट्रोल नहीं चलता है, पानी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कि कितना पीना है, लेकिन जैसे ही भीतर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा, नहीं। तो पांचों तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक है। एक तत्व भी कम हो जाए तो जीवन के अंदर कितनी बेचैनी का अनुभव होता है, जी नहीं सकता है इंसान। ठीक इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, जीवन जीने के लिए उसे भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? शरीर को पांच तत्व चाहिए, आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कि नहीं चाहिए, सोचते हैं आत्मा निर्लेप है इसलिए उसको कुछ नहीं चाहिए, क्या कहेंगे? शरीर को जीने के लिए 5 तत्व चाहिए, शरीर में आत्मा को जीने के लिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए? क्या चाहिए? आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 बातें चाहिए, शरीर को सिर्फ 5 चाहिए। वो 7 बातें कौन सी है जो आत्मा को जीवन जीने के लिए जरूरी है, जिसके बिना भी जीवन नहीं? वो है 7 गुण। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। वो 7 गुण कौन से? सर्वप्रथम हर इंसान को ज्ञान चाहिए, इसीलिए बचपन से ही ये प्रार्थना पढ़ाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। ज्ञान की कोई कमी नहीं है इस संसार के अंदर, विज्ञान चरम सीमा पर है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा हमारे जीवन में, क्या मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान से? तो आज मनुष्य जीवन के अंदर सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है, और जब अहंकार में आकर इंसान जीता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके संबंधों में क्या होता है, फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तनाव बना रहता है, टकराव होता रहता है, अहंकार के कारण ही तो टकराव होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा, जो अहंकार है वो अहंकार को हम न्यूट्रलाइज कर सकते, खत्म कर सकते। ज्ञान जब व्यक्ति के अंदर आता है तो अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है उसका, और तब उसके जीवन की क्वालिटी बढ़िया बनने लगती है, अच्छी होने लगती है। क्योंकि अहंकार रहित जीवन कैसा होगा? उसके साथ साथ शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए। कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है। अगर उनसे पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था लेकिन अंदर में उसका मन मैला था, हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम उससे धीरे धीरे दूर हो गए। तो व्यक्ति को अच्छा कहाँ लगता है? जहां अंदर की शुद्धि हो, व्यवहार की शुद्धि हो, विचारों की शुद्धि हो, भावनाओं की शुद्धि हो, वहां उसको अच्छा लगता है। जहां अंदर की शुद्धि नहीं है, अंदर में मैलापन है, वहां कभी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, उस व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति के अंदर में मैलापन होता है, बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें करता है, जब लोगों को पता चल जाता है तो क्या कहता है? अरे बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, उसके अंदर क्या है पता ही नहीं चलता है, खतरनाक व्यक्ति कहा है ना। और उसके बदले में कोई व्यक्ति भोला है, जो अंदर है वही बाहर है, उसके लिए क्या कहते हैं? अरे भगवान का बंदा है, जो अंदर होगा ना वही बाहर आएगा, अंदर बाहर अलग नहीं होगा उसके। उसको कहा भगवान का बंदा है और उसको कहा खतरनाक है। तो इसीलिए व्यक्ति को जीवन के अंदर क्या अच्छा लगता है, शुद्धि अच्छी लगती है। शुद्धि चाहिए तभी तो भगवान के पास जाकर के भी मंदिरों में क्या प्रार्थना करता है, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे प्रभु तू साफ कर देना, है ना। अब भगवान को कहो तू साफ करते रहना, हम मैला होते रहे, हाँ ऐसा है। तो शुद्धि चाहिए, अशुद्धि अच्छी नहीं लगती है। और आज मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी अशुद्धि है स्वार्थ, आसक्तियां, कामनाएं, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन कैसा हो गया है, उसके संबंध कैसे होते जा रहे हैं। और जब लोगों को पता चलता है इसके अंदर स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं है तो क्या कहते हैं, इस हद तक स्वार्थ, इतना स्वार्थी इंसान है। तो ज्ञान चाहिए जिससे अहंकार रूपी अज्ञान को खत्म कर सके, शुद्धि चाहिए जिससे स्वार्थ रूपी अशुद्धि को हम खत्म कर सके अपने जीवन से। क्योंकि ये दो जहां है, जहां ज्ञान है जहां शुद्धि है, वहीं वो संबंधों में प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार होगा, स्वार्थ होगा, उस संबंध में कभी प्रेम होगा नहीं, हो सकता है। वो स्वार्थी इंसानों को देखते हुए लोगों को नफरत आने लगती है, प्रेम नहीं होगा। और जहां ये तीनों है वहीं जीवन में सच्ची शांति का अनुभव हो सकता है। आज हर इंसान को शांति चाहिए, लेकिन शांति क्यों नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं, शुद्धि नहीं और प्रेम नहीं है। मन में टेंशन बना रहता है, पता नहीं समय ये व्यक्ति के अंदर क्या स्वार्थ होगा, किस भावना से ये पास में आया होगा, तो ये टेंशन बना रहता है। और जहां ये चारों है वहीं जीवन में सच्चा सुख अनुभव कर सकते, नहीं तो सुख कहां। और जहां ये पांचों है वहीं जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद का अनुभव होता है। आनंद चाहिए इंसान को, जीवन में आज खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। इसीलिए जब व्यक्ति एक दूसरे की खुश खैराफत को पूछते हैं तभी भी क्या कहते हैं, आनंद मंगल हो। लेकिन कहां आनंद कहां मंगल, क्यों, क्योंकि न ज्ञान है, न पवित्रता है, न प्रेम है, न शांति है, न सुख है, तो आनंद कहां से होगा। ये सब हो तब तो आनंद भी हो और मंगल भी हो। और जहां ये छह हैं वही जीवन में आत्मशक्ति का अनुभव हो सकता है, आत्मशक्ति, विल पावर, मनोबल का अनुभव हो सकता है। आज इंसान के अंदर मनोबल तो छोड़ो, आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा है। और इसीलिए जीवन जीने के अंदर से एक रुचि ही खत्म हो गई है। तो ये सात गुण ये आत्मा की वास्तविकता है, शरीर की वास्तविकता है पांच तत्व, तो आत्मा की वास्तविकता है सात गुण। आत्मा सतोगुणी है, दूसरे शब्द में कहे तो यही आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है ना, इसलिए व्यक्ति जीवन में बेचैनी का अनुभव कर रहा है। आज हर शक्ति कम होने लगी है, इसलिए आत्मशक्ति का भी अभाव इंसान महसूस कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ गुण नहीं है, ये शक्तियां भी है। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सब शक्ति है। और ये बैटरी ही जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो क्या होगा? इसलिए आज जीवन के अंदर उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, जैसे कि इंसान जीवन ढो रहा है लेकिन जी नहीं रहा है, ढो रहा है। क्योंकि जिए तब जब ये सात गुण हो, तो इसीलिए व्यक्ति के जीवन में आज टेंशन, डिप्रेशन, एकदम उदासी, गम, यही भरा हुआ है। दुख, अशांति, नफरत, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, यही भरा हुआ है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई। बैटरी को चार्ज कैसे करें? तो चार्ज करने के लिए गाड़ी की बैटरी चार्ज कैसे रहती है? जितना गाड़ी चलती रहेगी तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। गाड़ी को खड़ा कर दिया एक महीना दो महीना तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो हमारी बैटरी को चार्ज करने का भी तरीका क्या है कि ये गुणों को जितना हम व्यवहार में प्रवाहित होने देते हैं उतनी बैटरी चार्ज रहेगी। इसलिए दुनिया में कहा जाता है कि आप किसी को प्रेम दो तो आपको भी प्रेम मिलेगा, आप किसी के साथ शांति से व्यवहार करो तो वो भी शांति से व्यवहार करेगा, हम ही अगर गुस्से से व्यवहार करेंगे तो गुस्सा ही मिलेगा, हम नफरत से बात करेंगे तो नफरत मिलेगी। जो देंगे वो मिलेगा, ये कुदरत का अनादि नियम है। बाकी मांगने से मिलता नहीं है। ये सात गुण क्यों चाहिए हमें जीवन के अंदर, जिसको अनुभव करने के लिए विभिन्न तरीके हमने अपनाए जीवन में, और ये कौन से तरीके अपनाए? संबंधों में अपेक्षा रखी सबसे पहले, ये व्यक्ति द्वारा मुझे प्रेम मिले, ये व्यक्ति द्वारा मुझे सुख मिले, ये व्यक्ति द्वारा मुझे शांति मिले। और मिली? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कैसे करेगी? इसीलिए जब दोनों ही खोखले हैं तो एक दूसरे को कहां से दे सकते हैं। इसलिए आज घर गृहस्थियों में भी देखो क्या हो रहा है, अपेक्षा रहती है ये व्यक्ति मेरे से प्यार से बात करे। कहने में भी इंसान कह देता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इससे कोई धन संपत्ति कुछ नहीं, प्रेम से बात तो करे। प्रेम से बात करने में उसको कौन सा खर्चा लगता है? लेकिन प्रेम से वो कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बैटरी डिस्चार्ज है, प्रेम है ही नहीं, अंदर से खोखला है तो कैसे प्रेम से बात करेगा? सोचने की बात है। कहेगा ये शांति से बात करे ना, लेकिन शांति से बात कैसे करेगा? अंदर शांति है ही नहीं तो शांति कहां से आएगी? इसलिए आज घर गृहस्थ में भी तनाव हो गया है संबंधों में, क्योंकि एक दूसरे के साथ भी हम प्रेम से, शांति से, खुशी से, आनंद से बात नहीं कर सकते, खोखले हो गए तो कहां से बात करेंगे। इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है, संबंध टूटते जा रहे हैं। बैटरी डिस्चार्ज है तो क्या होगा। तब दूसरा तरीका अपनाते हैं, कौन सा? कर्म करो। सोचते हैं कर्म करने से मिल जाएगा, इसलिए विभिन्न कर्म किए। आज इंसान धन कमाता है, क्यों धन चाहिए? सोचता है धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन कमाते हैं ना। एक करोड़पति को पूछ लो सुख शांति आ गई, क्या कहेंगे? अरे भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। धन आ गया, सुख शांति नहीं आई। कारण क्या हुआ? क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसीलिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी यही कहा, शांति बाहर नहीं भीतर है, भीतर जाओ। धन से कोई सुख शांति नहीं मिलती है। सुख शांति से अगर बैटरी चार्ज करना है तो उसके लिए कुछ और बात है। धन कोई माध्यम नहीं है। कई लोग शादियों पर जाते, पार्टियों में जाते, पूछो शादियों पर क्यों जाते हो, पार्टियों में क्यों जाते हो? कितने समाज में रहना है तो सबके साथ हमारा स्नेह भरा संबंध बना रहे, प्रेम बना रहे, उसके लिए। पूछो व्यक्ति को प्रेम बना तो क्या कहता है? अरे एक को खुश किया, दो नाराज हो गए, प्रेम बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है ना? कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते हैं? कहते आनंद मिलता है इसलिए। पूछो आनंद मिला, क्या कहते? अरे बहुत पॉलिटिक्स है। कहां पॉलिटिक्स नहीं है। कई लोग गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? कहते आत्मशुद्धि के लिए। पूछो आत्मशुद्धि हो गई? ऐसे ही आत्मशुद्धि अगर हो जाती थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को जेल में बंदी क्यों रखे, वहां ले जाकर गंगा स्नान करा देवे और छोड़ दो, शुद्ध हो गए। ये कोई तरीका है? कहने का भावार्थ है कि विभिन्न तरीके अपनाए हमने। कई लोग सत्संगों में जाते, पूछो सत्संग में क्यों जाते हो? कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। पूछो ज्ञान आया? सत्संग सुनने के बाद घर में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये ज्ञान भी नहीं आता है। तभी तो आजकल के छोटे बच्चे भी यही पूछते हैं, आप यही सुन के आए क्या? ज्ञान तो आया ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ ऐसा सत्संग सुनने का। कहने का भावा कि जीवन में हमने कितने विभिन्न तरीके अपनाए बैटरी चार्ज करने का, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि बैटरी चार्ज करने का तरीका बाहर नहीं है, भीतर है। और इसीलिए जब कर्म करने से भी प्राप्त नहीं हुआ तो कितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया जीवन के अंदर, तनाव बढ़ता गया। तब तीसरा तरीका अपनाया, कौन सा? भगवान को याद करो, वही स्रोत है, उसको याद करो। इसलिए रोज भगवान से मांगना आरंभ किया, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, हे प्रभु तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। रोज मांगते रहे, मिल गई। अरे कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाले ने फेंक दिया और हमने रिसीव कर लिया यहाँ पर और बैटरी चार्ज हो गई, नहीं। स्रोत वही है लेकिन मांगने से मिलता नहीं है। इसलिए कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। तो स्रोत परमात्मा है, उससे ही बैटरी चार्ज होगी, लेकिन मांगना ये कोई तरीका नहीं है बैटरी चार्ज करने का। उसके लिए तो कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, और कनेक्शन जोड़ने का नाम ही है योग। और जब भगवान को याद करने से भी प्राप्त नहीं हुआ, रोज मांगते रहे और प्राप्त नहीं हुआ, तो मनुष्य ने चौथा तरीका अपनाया। कौन सा? इससे तो मर जाना अच्छा है, इसलिए आपघात करना चाहा। कितने लोग आपघात कर रहे, पीछे से चिट्ठी लिख के जाते हैं, मेरे जीवन में टेंशन बहुत हो गया था, शांति नहीं थी, इसीलिए मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं। मरना चाहता इंसान क्यों? क्योंकि कहते शांति नहीं है, कोई कहेगा सुख नहीं है, दुख ही दुख है, ये कोई जीवन है? इससे तो मर जाना अच्छा है, इसलिए मरना चाहते। एक बार एक ह्यूमन बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, मानव बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, लोगों ने उसको पकड़ लिया, भाई तू मरना क्यों चाहते हैं और इतने लोगों को मारना क्यों चाहते हैं? पता है उसने क्या कहा? बचपन से लेकर अब तक किसी ने मेरे साथ प्यार से बात तक नहीं किया है, जहां गया ठोकर ही मिलती रही, ये कोई जीवन है? इसे तो मर जाना ही अच्छा है, इसलिए मरना चाहता। तो संसार में इंसान को क्या चाहिए? संसार में इंसान को ये सात गुण ही चाहिए। कहने में भी इंसान कहता है सूखी रोटी चलेगी, लेकिन शांति चाहिए। 36 प्रकार के भोजन बने हो, लेकिन खाने के समय अगर शांति न हो, खा सकते हैं? कहेंगे महल नहीं चाहिए, झोपड़ी चलेगी, लेकिन सुख से जीवन जीना चाहिए बस। कोई धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम से दो शब्द तो मिले। तो इंसान को ये चीजें नहीं चाहिए, आत्मा को अगर चाहिए तो आज ये सात गुण ही चाहिए। यही जीवन है, उसके बिना जीवन जीवन नहीं है, इसीलिए इंसान मरना चाहता है। आपघात करने वाले से अगर पूछ लिया जाए कि क्या आपघात करने से आत्मा को शांति मिलेगी, क्या यही सही तरीका है? कभी नहीं मिलेगी, आत्मा और ही भटकती है, और ही दुखी होती है, और ही कष्ट को पाती है, तो शांति तो मिलनी नहीं है ऐसे। ये कोई तरीका नहीं है जो सुख प्राप्त करने का, ये कोई तरीका नहीं है शांति प्राप्त करने का, या आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। तो क्या करे? तब इंसान ने पांचवा तरीका अपनाया। कौन सा? दूसरों को मारो, है ना? इसलिए आज दुनिया के अंदर इतना आतंकवाद चलने लगा है। दूसरों को मारो, वो सोचते यही दुख शांति की जड़ है, इसको मार के खत्म करो, वो सोचता इसको मारो, उसको मारो, उसको मारो, और इसलिए एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। अब दूसरों को मारने से शांति मिलेगी? दूसरों को मारने से सुख मिलेगा? क्या यही सही तरीका है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का? नहीं, ये भी सही तरीका नहीं। तो क्या करे इंसान? वास्तव में ये गुण भी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि उसका इतना गहरा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ है। आज ज्ञान इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से ही हमारी नर्वस सिस्टम ठीक रहती है, जो मैसेजेस पास करती है। शांति इसलिए चाहिए क्योंकि उससे हमारी श्वासों की गति ठीक रहती है। आज व्यक्ति जब शांति में है तो उसके श्वासों की गति कैसे चलती है? नॉर्मल। और जब टेंशन में है तब एबनॉर्मल चलती है। इसीलिए तो लोग जब प्राणायाम भी कराते हैं तो पहले क्या कहते हैं? रिलैक्स हो जाओ, पहले शरीर को रिलैक्स करो, शांति अंदर हो। तो शांति इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से ही हमारी श्वासों की गति नॉर्मल चलेगी। आज श्वासों की गति अब नॉर्मल हो गई, इसीलिए कई बीमारियां श्वास से संबंधित शुरू हो गई है। इसी तरह सुख का संबंध है हमारी पेट की सिस्टम के साथ, है ना। आज व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और उसी समय वहां पर कोई दुखद समाचार आकर के सुना दे तो एक भी चीज खाने की इच्छा होगी, अरुचि हो गई। खाना खाने बैठा था और किसी ने आके दुखद समाचार सुना दिया तो सबसे पहली बात अरुचि हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर व्यक्ति ने किसी को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत खा भी लिया तो क्या होगा, बदहजमा होने लगेगा, है ना। तभी तो इंसान जब खाना खाने बैठता है तो क्या कहता है, अरे सुख से खाने तो दो जो शरीर को भी लगे, क्योंकि पेट को सुख चाहिए, खाना खाने समय सुख चाहिए, तभी वो खून बनता है। और अगर सुख नहीं है खाना खाने समय भी तो पेट की सिस्टम गड़बड़ा जाती है, एकदम उलट पुलट होती है, कभी गैस होने लगा, कभी एसिडिटी बढ़ गई, कभी कुछ हो गया, क्योंकि सुख नहीं है अंदर। और इसी तरह प्रेम का संबंध हमारे हार्ट के साथ है, हृदय के साथ है। आज किसी के साथ बहुत गहरा संबंध हो और इतना विश्वास हो, प्यार हो, और वहीं से अगर धोखा मिले तो पहला दर्द कहाँ होगा, सिर में या पेट में, छाती में होगा, पहला दर्द छाती में हो। आज दुनिया के अंदर हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, कारण क्या, क्योंकि प्रेम खत्म होता जा रहा है। भारत में भी नंबर वन पर हार्ट की बीमारी चलने लगी है, क्यों, क्योंकि जहां एक पारिवारिक प्रेम था वो भी आज नहीं रहा है, टूटने लगा है, प्रेम खत्म होता जा रहा है, इसलिए लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, धोखा है बस। इसी तरह पवित्रता का संबंध पंच इंद्रियों के साथ है। आज यही पंच इंद्रियों के अंदर अशुद्धि आ गई है, आसक्ति आ गई है, इसीलिए सारी सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रही है। कहीं देखो आंखों की आसक्ति है, खूब ज्यादा टीवी देख रहे हैं, खूब ज्यादा तो आंखें नुकसान होने लगती है। कहीं देखो खाने की आसक्ति है तो भी नुकसान हो रहा है, कहीं देखो तो जोर जोर से सुनने की आसक्ति आ गई है तो वहां भी तो जहां ये पंच इंद्रियां उसके अंदर अशुद्धि आसक्ति आ गई है तो भी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, है ना, आसक्ति और कुछ नहीं। और इसी तरह शक्ति का संबंध हमारे मसल्स के साथ है। आज व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता रहे लेकिन समय पर किसी ने उसका मनोबल तोड़ दिया, उसके बाद छोटे से छोटी परिस्थिति को पार करने की शक्ति उसके अंदर नहीं होगी। और कोई व्यक्ति भले कमजोर है लेकिन समय पर अगर उसका मनोबल जाग जाए तो बड़े से बड़ी परिस्थिति को पार करने की ताकत आ जाती है। बीच में जब गुजरात में भूकंप हुआ था कुछ साल पहले तो हम लोग गए थे गुजरात में, तो देखा तो एक मकान था, 5 मंजिल का मकान था, तो 2 मंजिल जितना जमीन में धस गया था। और सबसे पहले भूकंप के समय उसकी सीढ़ियां टूट गई थी। अब जो 5वें मंजिल पर लोग थे वो उतरे कैसे, तो लोगों ने साड़ी का रस्सा बना बना करके नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो 5वें मंजिल पर एक बूढ़ी माताजी रहती थी 80 साल की, किसी के सहारे के बिना उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, है ना, खटिया पकड़ ली थी। परिवार वालों ने कह दिया, देखो माताजी सीढ़ियां टूट गई है, अब आपको उतारने का कोई और तरीका नहीं है, सब लोग तो ये रस्से से नीचे उतर रहे हैं साड़ियों के, और इसीलिए अगर उतरना है तो आपको भी उसी से ही उतरना पड़ेगा, और कोई आपको उठा करके तो उतर नहीं सकता है। माताजी कहने लगी, मैं कैसे उतरूंगी, क्या होगा मेरा। सभी ने कहा, भाई हम तो चले, हरेक को अपनी जान प्यारी थी, हरेक उतरना शुरू कर दी, माताजी अकेली रह गई, आखिर उसको भी जीने की इच्छा तो थी। तो जब सब चले गए, देखा कोई नहीं रहा, तो अपने आप उठी भी और उस रस्ते से नीचे उतर गई। कहां से शक्ति आई? तो कहने का भावार्थ है कि व्यक्ति का मनोबल जब जाग जाता है, तो वो कितनी भी शारीरिक रूप से अशक्ति क्यों ना हो, फिर भी असंभव कार्य को संभव कर लेता है। और इसी तरह आनंद का संबंध है हमारी टोटल हार्मोनल सिस्टम के साथ। आज हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब होते तो उसका कारण है आनंद नहीं, खुशी नहीं। आज इंसान के जीवन में खुशी नहीं है, हंस नहीं सकता है वो। इसीलिए आजकल दुनिया में लाफिंग क्लब्स शुरू हो गए हैं, बगीचे में जाकर के हंसता है इंसान, घर में तो हंसने का नाम ही नहीं है, तो बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। लेकिन बगीचे में हंस के आता है फिर वही तो इसीलिए कहने का भावार्थ है कि ये सातों गुण किस लिए चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारा स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। बैटरी डिस्चार्ज है, इसलिए हर रोज नई नई बीमारियां भी निकल रही है। कभी क्या बीमारी है, कभी नाम भी नहीं सुना, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम निकल रहे हैं। वास्तव में इनका कनेक्शन ये सात गुणों के साथ है। जहां ये सात गुण है वहां शरीर स्वस्थ है। देवी देवताओं के शरीर सदा स्वस्थ निरोगी काया कंचन काया दिखाते हैं। कभी कोई कथा में सुना कि लक्ष्मी नारायण को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, या फलाने डॉक्टर जो वैद्य थे उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, कोई कथा में आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां उनके सामने भी आई होंगी, लेकिन सदा बैटरी फुल चार्ज थी, इसीलिए कोई बात की इफेक्ट नहीं होती थी, न शरीर के ऊपर न मन के ऊपर। और आज जब आत्मा की बैटरी कलयुग के अंदर डिस्चार्ज है, तो रोज कहां ना कहां शरीर में भी तकलीफ होती रहती है, तो मानसिक रूप से भी तकलीफ होती रहती है। अब ये बैटरी चार्ज कैसे करें? तो जैसे शरीर को जो पांच तत्व चाहिए, उसके लिए शरीर के पास भी पंच इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से वो उसकी पूर्ति करता है। आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी। ठीक इसी प्रकार जो आत्मा को सात गुण चाहिए, उसके लिए आत्मा के पास भी तीन सूक्ष्म शक्ति है। ईश्वर ने वो बनाया हुआ है मैकेनिज्म कि जो आत्मा की बैटरी को भीतर से ही चार्ज करे, और वो तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन है आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम, जितने विचार आते हैं मन के अंदर आते हैं, फिर बुद्धि के पास जाते हैं जो समझने का कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ के करना, यानी एक है सोचना, दूसरा है समझना। सोचने का काम मन करती है तो समझने का कार्य बुद्धि करती है, और उसके बाद कर्म में आओ तो संस्कार रूप में वो अंदर में समा जाता है। मन क्या चीज है? मन, जिसके लिए कई उपमाएं दी गई है कि मन एक तूफानी घोड़ा है, मन एक चंचल बच्चे के समान है, बंदर के समान है, लेकिन वास्तव में मन है हमारी सोचने की शक्ति का दूसरा नाम। जितने भी विचार आते हैं मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर चार प्रकार के विचार होते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, जो गुणों से संबंधित है, मूल्यों से संबंधित है, जिसमें कोई भी प्रकार के स्वार्थ भावना नहीं है, उसको कहते हैं अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव विचार, बुरे विचार, जो कोई न कोई बुराइयों के वश है, कमजोरियों के वश है, कोई न कोई अशुद्धि के वश है, विकारों के वश है, स्वार्थ भावना को लेकर के हैं, ये सारे नेगेटिव विचार, बुरे विचार। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये कार्य करना है, कराना है, कर्म से संबंधित विचार। और चौथे प्रकार के विचार है व्यर्थ विचार, फालतू विचार, कि जब मनुष्य के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचने लगता है, ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता था, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना है, वो अब नहीं सोचता है, वही बीती हुई बातों को, जैसे गैया घास उगाड़ती रहती है ऐसे वो भी बीती हुई बातों को सोचते रहते हैं। अब उससे फायदा क्या? हाँ, बीती हुई बातों से सीख ले ले और जीवन में आगे बढ़े, बाकी वही सोचते रहने से तो कुछ प्राप्ति नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, इसलिए उसको कहते हैं व्यर्थ विचार। ये चार प्रकार के विचार सारे दिन में मन के अंदर आते रहते हैं, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी आवश्यक विचार, कभी व्यर्थ विचार। थोड़ा अपने आप को देखो, जिस युग में हम जी रहे हैं इस युग में अधिकतर कौन से विचार होते हैं चारों में से, सबसे ज्यादा कौन से विचार होते हैं चारों में से? नेगेटिव, दूसरे नंबर पर व्यर्थ विचार, पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार ना के बराबर है ना। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है, वहां भी स्वार्थ है ना, हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो दो नारियल चढ़ा देंगे, स्वार्थ हो गया ना, बिजनेस हो गया, ये काम का भाव दो नारियल है, अगर तुम कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा और भगवान ने नहीं किया तो नहीं मिलेगा, है ना। भाव हम लगाते हैं, थोड़ा बड़ा काम होगा तो कहेंगे हे प्रभु 101 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे। एक बार एक भाई की हीरे की अंगूठी गुम हो गई तो उसने भगवान से प्रार्थना की, बड़ा परेशान हो गया, हीरे की अंगूठी गुम हो गई, तो भगवान से कहता हे प्रभु मेरी हीरे की अंगूठी मिल जाए तो मैं 1000 रुपया का चढ़ावा चढ़ा दूंगा। और 2 मिनट के अंदर उसने प्रार्थना करके पीछे मुड़ा तो देखा वही पड़ी हुई थी, तो भगवान को कहता है भगवान मिल गई, अभी अपना सौदा कैंसल। ये तो भावना है मनुष्य की, जहां भगवान के साथ भी सकारात्मकता नहीं रही तो इंसानों के साथ तो क्या होगा, सोचो। और इसीलिए जहां अच्छे विचार ही नहीं रहे, न भगवान के साथ रहे न मनुष्य के साथ रहे, तो जैसे विचार जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव है, चिंतन की क्वालिटी व्यर्थ है, तो जीवन की क्वालिटी क्या हो जाएगी, सोचो। नेगेटिव सोचने के बाद कभी आत्मा की बैटरी सुख शांति से चार्ज हो सकती है? हाँ? नहीं हो सकती है। सिंपल बात है, इतनी सरल समझने की बात है कि नेगेटिव सोचने के क्या बाद क्या आत्मा को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, हो ही नहीं सकता है। अगर मुझे सुख शांति आनंद से अपनी बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने चिंतन की क्वालिटी को बदलना पड़ेगा। बस इतना सा परिवर्तन करना, कुछ छोड़ना नहीं है, न गृहस्थ छोड़ना है, न जिम्मेवारियों को छोड़ना है, न कर्तव्य को छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना है। छोड़ना है तो नेगेटिव विचार करना छोड़ना है, बस, और कुछ नहीं छोड़ना है। क्योंकि उसी से ही नेगेटिव सोचने के बाद सुख शांति नहीं मिलेगी, उससे दुख, अशांति, तनाव यही मिलेगा। अगर मुझे सुख शांति चाहिए तो बस मुझे इतना थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा कि नकारात्मक विचार के बदले सकारात्मक चिंतन आरंभ करना होगा। बस उतना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसी से बैटरी चार्ज होगी। इसीलिए तो महान ऋषि मुनियों ने कहा शांति बाहर नहीं, भीतर है, भीतर जाओ। लेकिन भीतर से कैसे चार्ज करना मालूम ही नहीं पड़ा, किसी ने बताया ही नहीं अब तक। इसलिए जितना सकारात्मक चिंतन होगा, जितना श्रेष्ठ विचार होगा, अच्छे विचार होंगे, उतनी ही बैटरी चार्ज होगी। क्योंकि विचारों का ही प्रभाव जीवन के ऊपर है। जैसी क्वालिटी के विचार होंगे वैसी भावनाएं उत्पन्न होंगी, वैसा व्यवहार होगा। जिस प्रकार के चिंतन बार बार करते रहो तो वैसा अनुभव करने लगेंगे, उसमें अनुभव कराने की शक्ति है। बार बार कोई भी बात को सोचते रहे तो वैसी मान्यता बन जाएगी, वैसी हमारी मनोवृत्ति बन जाएगी, और फिर वो मान्यता सही होने लगती है। संकल्प की तो शक्ति है, इसीलिए कहा जाता संकल्प एक बीज है, विचार एक बीज है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। अगर सकारात्मक बीज बोएंगे तो सकारात्मक फल मिलेगा, नकारात्मक चिंतन करेंगे तो वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कहा सकारात्मक विचारों से शक्ति का संचार होने लगता है और नकारात्मक विचारों से शक्ति व्यर्थ जाने लगती है। हाँ, कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज सुना माना कल से शुरू हो जाएगा, नहीं। उसके लिए अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी हमें, अपने चिंतन की धारा को बदलने के लिए। क्योंकि वही विचार फिर बुद्धि के पास जाते हैं, बुद्धि जो समझने का कार्य करती है। लेकिन बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि है आत्मा के अंतर चक्षु। जैसे ये आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है हर चीज, वैसे बुद्धि के अंतर चक्षु से भी, तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, उससे भी हम सब स्पष्ट देख सकते हैं और उसके बाद समझ सकते हैं। क्योंकि ईश्वर से हर इंसान को दो गिफ्ट मिलती है। जब जन्म हम लेते हैं ना, जब हमारा जन्म होता है तो ईश्वर से हमें दो सौगात मिलती है। कौन सी? पहला है विवेक युक्त बुद्धि, जिसके अंदर विवेक भरा हुआ है, और दूसरा है मनोबल, आत्मशक्ति। ये दो गिफ्ट इंसान को मिलती है जन्म होने पर, जिससे वो विवेक से क्या करते हैं, हम सही गलत को अच्छी तरह पहचान सकते हैं, ये सही है, ये गलत है। इसीलिए तो आज की दुनिया में आप किसी छोटे बच्चे के आगे भी झूठ बोल करके देखो, वो बच्चा भी आपको कहेगा आपने झूठ बोला ना। यानी उसके पास भी विवेक है कि ये सही नहीं है, लेकिन उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं, चुप बैठ, तुम समझता नहीं है। और जितनी बार उसको कहा चुप बैठ, तुम समझता नहीं है, उतनी बार हमने उसके विवेक को मारा। इसलिए बाद में उसका विवेक काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि मार दिया हमने, खत्म कर दिया उसके विवेक को, तो चलेगा कहां से। फिर बाद में हम ही उसको कहते हैं इतना भी समझ नहीं है तेरे अंदर, इतना भी विवेक नहीं चला सकता, लेकिन उसका विवेक तो हमने ही खत्म कर दिया था, तो चलेगा कहां से। उस विवेक युक्त बुद्धि से हम क्या करते, कैसे समझते हैं, तो पहले हर बात को स्पष्ट देखते हैं, और जितना हमारी दृष्टि स्पष्ट है, अंतर दृष्टि स्पष्ट है, उतना हम हर बात को यथार्थ रूप से समझ सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया के अंदर वही दृष्टि धुंधली हो गई है, इसीलिए व्यक्ति तनाव में रहता है, समझ नहीं पाता है, ये करे ऐसा करे वैसा करे, है ना। 10 लोगों को पूछना पड़ता है आप क्या समझते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। अब उसने भी अपने विवेक से बता दिया ये करो, और बाद में नुकसान हुआ, और किसी ने हमें कहा अरे आप तो इतने समझदार, आपने कैसे ये निर्णय ले लिया, तो क्या कहते हैं, अरे ये मेरी बुद्धि का कमाल नहीं, इसकी बुद्धि का कमाल है। अरे आपके पास तो भगवान ने बुद्धि दी है, फिर उसकी बुद्धि का कारण लेने का कारण क्या था, तो कहेंगे उस वक्त हमारी बुद्धि दुविधा में फंसी हुई थी, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए तो उसकी बुद्धि का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जैसे हमारी बुद्धि अगर दुविधा में फंसी है तो उसकी बुद्धि भी तो दुविधा में है, तो वो क्या जवाब देंगे। इसलिए जीवन के अंदर गलत निर्णय लेते, तो जहां दृष्टि स्पष्ट है तो स्पष्ट समझ सकते, फिर तर्क चलाते विश्लेषण करते, फिर परखते और फिर निर्णय लेते। और देखा गया है कि जब जब जीवन के अंदर सही निर्णय लिया है तब तब एक सुकून का अनुभव किया है, और जब जब जीवन में गलत निर्णय लिया है तब तब मन परेशान हो उठा है। प्राप्त करने के बाद भी अंदर में सुकून नहीं है, सुख नहीं है, तो सुख का आधार क्या है, यथार्थ निर्णय। और यथार्थ निर्णय कब ले सकते हैं, जब यथार्थ हर बात को देखकर समझ सकते हैं। और उसके बाद कर्म में आते हैं, तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार। तो संस्कार जो हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है, हमारी स्मृति के अंदर समा जाता है। मनुष्य के अंदर संस्कार कितने प्रकार के हैं, हर इंसान के अंदर 5 प्रकार के संस्कार हैं। इसलिए एक व्यक्ति न मिले दूसरे से, हर व्यक्ति भिन्न है। वो 5 प्रकार के संस्कार कौन से, सबसे पहले प्रकार के संस्कार है ओरिजिनल संस्कार, जो 7 गुणों से भरपूर, बैटरी फुल चार्ज। जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना पवित्र है, महात्मा समान ज्ञानी उसको कहते हैं। जब सोया हुआ है तो कहेंगे कितनी शांति है, नींद में अगर मुस्कुराता है तो कहेंगे कितना सुख है उसको, जब वो हंसता है तो कितना प्यारा लगता है, कहते कितना आनंद में है। तो 7 गुणों से बैटरी फुल चार्ज रहती है। लेकिन जैसे वो इंसान बड़ा होता है, वो बच्चा बड़ा होने लगता है, दूसरे प्रकार के संस्कार दिखाई देते। कौन से, पूर्व जन्म के संस्कार, कोई कहां से आए कोई कहां से आए, तो उस जन्म के संस्कार को भी साथ ले आते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। एक बार और बीच बीच में हमारे कर्म के साथ इंटरफियर करते हैं, इसीलिए कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लगा, 5 साल का बच्चा शास्त्र के श्लोक बोलने लगा, तो कहेंगे उसके पूर्व जन्म के संस्कार उदय हो गए। अब उसी में उदय हुए, बाकी सब में नहीं हुए, सब में होते हैं, लेकिन इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है। किसी में बहुत पावरफुल इंटेंसिटी से चलने लगता है तो दिखाई देता है, लेकिन उस समय व्यक्ति का विवेक और बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जब पूर्व जन्म के संस्कार चलने लगते। एक बार एक बहन थी, उसका एक ही बेटा था, छोटा सा, केजी में उसको पढ़ने के लिए रखा, उसको एबीसीडी पढ़ाती थी, 1 2 3 स्पेलिंग लिखाती थी। अब जब वो बच्चा 40 पर आता था, 40 लिखना उसको आता नहीं, 40 पर आया कि उसको गलती होती थी, तो वो माँ भी उसके पीछे पड़ गई कि 40 लिखना तेरे को नहीं आता है, 40 लिखो, 1 2 3 लिखो। तो रोज उसको स्पेलिंग लिखाती रहती थी। एक दिन वो बाजार गई कुछ सब्जी लाने के लिए, घर में आई जब तो देखा बच्चा बाहर खेल रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आया, तेरे को 40 लिखना तो आता नहीं, कल तेरी परीक्षा है, बाहर खेल रहा है, तुम लिखो, चलो घर में चलो। वो आया बच्चा, वो सब्जी काटने बैठी और सामने बच्चे को बिठाया, लिखो 1 2 3 लिखो, सारा लिखाने लगी। बच्चा लिखते 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 वो 40 पर आया, फिर गलती हो गई उसे। उस वक्त वो माँ को इतना गुस्सा आया कि जो हाथ में चाकू था वही ठोस दिया। बाद में बड़ी पश्चाताप करने लगी, मेरा तो भाव नहीं था, मैं तो उसको सिखा रही थी, लेकिन क्यों हो गया यह कर्म। तो यही, और कोई जवाब नहीं है, यही एक जवाब आता है, कोई जन्म का ये दो आत्माओं का कोई ऐसा हिसाब किताब था जो इस जन्म में माँ और बेटे के रूप में आके चुप्त हुआ। लेकिन जिस वक्त वो पूर्व जन्म का संस्कार कार्य करने लगा, उस समय विवेक और बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जो पता ही नहीं चलता कि हाथ कहाँ चला गया और क्या हो गया। तो ये है पूर्व जन्म के संस्कार जो बीच बीच में इंटरफियर करते रहते, और उस वक्त हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी संस्कार, माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार। कोई बच्चा माँ जैसा होगा, कोई पिता जैसा होगा, कोई दादा जैसा होगा, है ना। एक बार एक बच्चा था, बहुत झूठ बोलता था, बात बात में झूठ बोलता था। कई बार उसको देखा झूठ बोलते। एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, तुम झूठ क्यों बोलता है। हंसने लगा, जानता था खुद भी झूठ बोल रहा। मैंने उसको पूछा, अच्छा ये बताओ कि ये झूठ बोलने से तुम्हें क्या मिला। कहता है कुछ नहीं। फिर क्यों झूठ बोलना चाहिए। तो कहता है बस ऐसे ही बोल देता हूं। उसको समझाने का प्रयत्न किया कि देखो झूठ बोल करके तुम अपना कैसा व्यक्तित्व बना रहा है, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। कई उदाहरण सुनाए, किस्से सुनाए, कहानियां सुनाई। समझदार था, मेरी हर बात समझ रहा था। आधा पौना घंटा उसको समझाया, पौने घंटे के बाद मुझे कहता है ठीक है आगे से झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा वायदा करो कभी झूठ नहीं बोलोगे। कहता वायदा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पास में एक बुजुर्ग भाई खड़े थे, हमारी बातें सुन रहे थे, उनको हंसी आ गई। मैंने पूछा आप क्यों हंसे। कहा दीदी ये जो वायदा किया है ना ये भी झूठ है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ है, उसने समझ के वायदा किया है। कहा इसका दोष नहीं, इसका बाप भी ऐसा ही है, और उसके दादा को भी देखा वो भी ऐसा ही था। ये जब तक झूठ नहीं बोलते ना उसकी रोटी हजम नहीं होती, इसलिए ये वायदा जो किया है ना वो भी झूठ है, क्योंकि ये उसके खानदानी संस्कार है, ये खून के संस्कार है। वायदा कर लेने से खून बदली नहीं हो गया, ये खानदानी संस्कार। चौथे प्रकार के संस्कार जो इस जन्म में हम नए बनाते हैं, संघ के प्रभाव में आकर के। जैसा संग वैसा रंग। कई बार अच्छे घर के बच्चे होते हैं, कहीं हॉस्टल में पढ़ने के लिए रखते हैं, बुरी संगत में फंस जाते हैं, और जब माँ बाप को पता चलता है, बच्चे को समझाने का प्रयत्न करते, बेटा ये संग छोड़ दे, ये ठीक नहीं है, वो माँ बाप को छोड़ने लिए तैयार हो जाएगा, संग को नहीं छोड़ेगा, इतना परवश हो गया है। और पांचवें प्रकार के संस्कार है दृढ़ता के संस्कार, कि व्यक्ति एक बार अंदर में ठान ले कि मुझे ये करना है, बस कोई उसको रोक नहीं सकता है, उसकी दृढ़ता जागृत हो जाती है, वो करके ही छोड़ता है। तो ये पांचों प्रकार के संस्कार होने के कारण कभी कौन सा चल रहा है, कभी कौन सा चल रहा है, तो एक व्यक्ति न मिले दूसरे से, हर व्यक्ति भिन्न है। इसलिए एक ही मात पिता के दो बच्चे होंगे, माँ खुद कहेंगी ये शैतान है ये आज्ञाकारी है। जबकि माँ बाप ने बच्चों को सब कुछ एक जैसा दिया, फिर दोनों अलग क्यों हैं? कहेंगे उसके संस्कार। तो ये पांच प्रकार के संस्कार के कारण एक व्यक्ति न मिले दूसरे से, क्योंकि जैसा संस्कार वैसा स्वभाव। इसलिए कहते इसका स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, स्वभाव संस्कार, जैसा संस्कार वैसा स्वभाव और नेचर, और जैसा नेचर वैसे फीचर्स। इसीलिए आज दुनिया में करोड़ों व्यक्ति है, एक का चेहरा न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का स्वभाव न मिले दूसरे से, एक का संस्कार न मिले दूसरे से। लेकिन ओरिजिनल संस्कार जो आत्मा के अनादि संस्कार है, वो सातों गुणों से भरपूर है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होने लगा, वो अपनी वास्तविकता से दूर चला गया और सात गुणों के बजाय सात अवगुणों के तरफ चला गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, उसके तरफ चला गया। मेडिटेशन माना क्या, ध्यान माना क्या, कि उस बुरे संस्कारों की से अच्छे संस्कार, ओरिजिनल संस्कार के तरफ वापस आने की एक यात्रा, अपनी वास्तविकता के तरफ आने की एक यात्रा, उसका नाम है मेडिटेशन। जो आत्मा की असलियत है उसके तरफ आना, उसका स्वरूप बनना, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन माना और कुछ नहीं, जो हमारी वास्तविकता है उस वास्तविकता में स्थित हो जाना, शांति, आनंद, प्रेम, उसमें स्थित होना, उसको कहते हैं मेडिटेशन। लेकिन कई बार कई लोग पूछते हैं, क्या आज की दुनिया के अंदर ये अनादि संस्कारों को लेकर के जी सकते हैं? क्यों नहीं जी सकते, बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। आज दुनिया में जितने भी महान आत्माएं हो गए, उनके व्यक्तित्व को देख करके यही कहते हैं कि एक चुंबकीय व्यक्तित्व था उनका, एक चुंबकीय आकर्षण था उनके अंदर। कौन सा आकर्षण था, किस बात का आकर्षण था? स्वामी विवेकानंद को देखो, महावीर स्वामी को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, मदर टेरेसा को देखो, आदरणीय दादी जी को हम देखते हैं, उनके अंदर एक ऐसा आकर्षण है जिसको कहते हैं रूहानी आकर्षण, आत्मा का आकर्षण है। ऐसी कौन सी विशेष बात है उन आत्माओं के अंदर? और कोई विशेष बात नहीं, हमारे तरह ही इंसान है ये भी, लेकिन उनके अंदर जो विशेष आकर्षण था आत्मा के सातों गुणों का, पवित्रता थी, ब्रह्मचर्य था, ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान पचाया हुआ था, इसी तरह प्रेम था, शांति थी, आनंद था, यही तो थी। ये सात गुणों के आधार से क्या हो सकता है, हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, समस्याओं को टाल सकते हैं, लोगों के मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, वातावरण को बदल सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण याद आता है स्वामी विवेकानंद के जीवन से, कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका चले गए, और जब अमेरिका चले गए तो लोगों ने हंसी उड़ाई उसकी और अपमान किया गीता शास्त्र का, सबसे नीचे गीता को रख दिया, बाकी सब शास्त्र ऊपर रखे और टॉप पर बाइबल को रखा, और भरी सभा में हंसी उड़ाई, आपकी गीता आउटडेटेड हो गई, अभी हमारी बाइबल टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई व्यक्ति होता था तो क्या करता था, क्या करता था? एक डिस्चार्ज बैटरी वाला इंसान होता था तो क्या करता था? हंगामा खड़ा कर देता था, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता था, खून खराबा होने लगता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद चार्ज बैटरी थे, उन्होंने क्या किया, वो मुस्कुराए और कहने लगे, आपने जो गीता का सम्मान किया ना, उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं? लोग आश्चर्य में पड़ गए, सम्मान कहाँ किया, हमने तो अपमान किया है। तो स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा तो सारे शास्त्र गिर गए। कहा आपने तो गीता को आधार बना दिया, अगर गीता न हो तो दुनिया का कोई शास्त्र कोई धर्म टिक नहीं सकता। सारी परिस्थिति बदल गई, लोगों की मनोवृत्ति बदल गई, ये कौन व्यक्ति है, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े, ये कौन है, ये कौन है। और शिकागो वर्ल्ड ऑफ पार्लियामेंट्स के अंदर एक भारत को ऐसा स्थान दे दिया, 10 मिनट की जो स्पीच उन्होंने दी, उस 10 मिनट की स्पीच ने ऐसा कमाल कर दिया जो आज दिन तक भी भारत के तरफ लोगों ने सम्मान की दृष्टि से देखना आरंभ किया। तब कहा कि लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, परिस्थिति को बदल सकते हैं और वातावरण को बदल सकते, इतनी ताकत है ये 7 गुणों के आधार पर जीवन जीने में। 7 गुण खाली अपने जीवन में विकसित करो और उसके आधार पर जीवन जीना चालू करो, देखो आपके आधी समस्याएं हल हो जाएंगी, परिस्थितियां बदलने लगेगी, आपके अनुकूल हो जाएगी। महावीर स्वामी जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, हिंसक प्राणी जब आते थे उनके समीप उस वातावरण के अंदर, तो वो अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ करके अहिंसक होकर के बैठ जाते थे। और इसी तरह महात्मा बुद्ध जब जंगल से गुजर रहे थे, आप सभी उठ के कहाँ जा रहे हो, नाश्ता 8:30 से पहले आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए कोई उठ करके जाएंगे तो और ही न सुनने को मिलेगा न नाश्ता मिलना है ना। कारण क्या है, आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन बाबा को भोग लगता है, जब तक भोग लगेगा नहीं तब तक नाश्ता किसी को मिलेगा नहीं, इसलिए मेहरबानी करके आप उठ उठ करके जाएंगे तो भी आपको कुछ मिलना नहीं है वहां पर, इसलिए शांति से बैठे रहो। 8:30 तक हमें मना किया, किसी को यहाँ से छोड़ना नहीं है, है ना, तो इसीलिए आप शांति से बैठो, इतनी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, जीवन उपयोगी बातें सुनने को मिल रही है, इसलिए आप सोचते हैं हम जल्दी ऊपर जाएंगे, किसी को जल्दी ऊपर जाने को मिलना नहीं है आज, ठीक है ना। तो इसीलिए टीचर्स बहने भी ध्यान दे कि बीच बीच में किसी को उठाए ही नहीं, अपनी पार्टी वालों को बैठने दो, क्योंकि नाश्ता मिलेगा ही नहीं, है ना, आप सोचेंगे हम जल्दी जाए, जल्दी जाने को नहीं मिलेगा। कहने का भावार्थ ये है कि 7 गुणों से जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो उससे जीवन के अंदर परिवर्तन महसूस होता है। महात्मा बुद्ध की बात सुना रही थी मैं कि जब जंगल से गुजर रहे थे तो लोगों ने कहा इस जंगल से मत जाना, यहाँ अंगुलीमल नाम का डाकू रहता है जो लोगों की अंगुलियां काटता है, लोगों को खत्म कर देता है। महात्मा बुद्ध चलते रहे, जब अंगुलीमल सामने आया उसको इतना प्यार से देखा और प्यार से उसके साथ व्यवहार किया, बस वो वहीं झुक गया और उसका अनन्य शिष्य बन गया। तो दूसरों को झुकाने का आधार भी ये 7 गुण है, जितना ये 7 गुणों के अंदर हम उसको विकसित करेंगे आधी जीवन की प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती। लेकिन तब इंसान सोचता है कि क्या ये व्यक्तित्व हम बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं? इंसान के व्यक्तित्व एक बर्फ की शिला जैसा है और आत्मा जो भीतर है इतनी शक्तिशाली, इतनी क्षमता है उसके अंदर, लेकिन वो सारी क्षमता जो है वो सीमित हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो 4 प्रकार के संस्कार हावी है, बुराइयों के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, खानदानी के संस्कार और संग के रंग के संस्कार, ये 4 प्रकार के संस्कार हावी हो गए उसके ऊपर, इसलिए वो क्षमता सीमित हो गई है। उसके लिए जैसे कहा जाता है लोहा से लोहा कटता है, ऐसे संस्कार से संस्कार को भी खत्म किए जा सकते हैं। ये चार प्रकार के संस्कारों का फोर्स अगर कम करना है तो उसके लिए पांचवें प्रकार के संस्कार को जागृत करना होगा। और दृढ़ता के संस्कार को जब जागृत करेंगे तब ये चारों प्रकार के संस्कारों का फोर्स कम होगा और आत्मा की क्षमता को बाहर ला सकेंगे। और जब आत्मा की क्षमता बाहर आती है उसके बाद उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? आध्यात्मिक ज्ञान हमें दिशा देता है कि उसको कैसे सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ सके। और जब सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ देते हैं तब व्यक्ति महानता के शिखर को प्राप्त करता है। और अगर आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा नहीं है तो वही व्यक्ति नकारात्मक दिशा की ओर मुड़ जाता, वही हिटलर भी बन जाता, वही कोई टेररिस्ट भी बन जाता, कोई आतंकवादी भी बन जाता है। क्षमता उसके अंदर भरपूर है लेकिन गलत दिशा है। इसलिए जब दिशा सही मिल जाती तो व्यक्ति महानता के शिखर को प्राप्त करने लगता है। साधारण नरेंद्र अगर स्वामी विवेकानंद बन सकता है, उसका आधार क्या था? आध्यात्मिक ज्ञान ने ही तो दिशा दिया उसको। तो ये है जीवन की वास्तविकता के कैसे हम अपनी आत्मा की बैटरी को भीतर से चार्ज करें। ये आत्मा इस शरीर के अंदर कहाँ निवास करती है? शरीर तो एकमात्र साधन है, एक रथ है, एक गाड़ी है, लेकिन आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, जो ड्राइवर है, वो भ्रुकुटी की मध्य में। वैसे मेडिकल साइंस द्वारा ये बताया गया है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, जो ये भ्रुकुटी के एकदम पीछे है, लेकिन सरफेस मार्किंग भ्रुकुटी है, इसीलिए हम मंदिर में जाते तो तिलक लगाते हैं। मंदिर में जाएंगे तो एक प्रथा है, चमड़े की चीज को बाहर उतारेंगे, फिर अंदर जाके तिलक लगाएंगे, फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के नमन करते हैं। ये प्रथा चलती आई है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य मालूम नहीं पड़ा कि चमड़े की चीज कोई बाहर क्यों उतारा। वो चमड़ा तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा जो लगा हुआ है, जिस चमड़े का अभिमान करते हैं, ये अभिमान के चमड़े को बाहर उतारा। तो उतारना है तो सबसे पहले अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो, फिर अंदर आओ, तिलक लगाया, अर्थात स्वयं को आत्मनिश्चय करो कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं चमड़ा नहीं हूं, मैं फलाना फलाना नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। कितना श्रेष्ठ भाव है, लेकिन उस भाव से कभी हम मंदिर में जाते नहीं है। और आत्मनिश्चय करके फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाके अपने प्रार्थना अर्पित करो कि मैं आत्मा, आपकी संतान, आपको नमन कर रही हूं, ये देह या फलाना फलाना नहीं। तो ये ऊंचा भाव जब है, और उसमें भी इसीलिए खास मंदिर में चंदन का ही तिलक लगाते। चंदन का ही तिलक क्यों लगाते हैं? एक तो उसका कलर गोल्डन होता है क्योंकि आत्मा शुद्ध और पवित्र है। दूसरा, चंदन लगाने से शीतलता महसूस होती है, माना आत्मा का जो स्वरूप है शांत स्वरूप है, यह आत्मा की वास्तविकता है। तीसरा, चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है कि आत्मा जब सातों गुणों में स्थित है तो अपने गुणों की खुशबू कर्मों द्वारा हम फैलाते हैं। और बहुत सूक्ष्म लगाते हैं, अर्थात कि आत्मा है ही अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप, एक प्रकाश पुंज है। लेकिन ओरिजिनली आत्मा कहाँ से आती है? जो कहते हैं जहां से आए वहां जाना है, कहाँ से आए और कहाँ जाना है? तीन लोक दिखाए हैं, नीचे है साकारी मनुष्य लोक जहाँ ये पांच तत्वों की दुनिया है। इस साकारी लोक से ऊपर एक और लोक है जिसको कहते हैं सूक्ष्म देव लोक, और उससे ऊपर एक और लोक है जिसको कहते हैं परम धाम, शांति धाम, जिसको अलग अलग नामों से जाना गया है। किसी ने कहा उसको शांति धाम है, जो अनंत शांति की दुनिया है, परे ते परे धाम है। किसी ने कहा ब्रह्म महतत्व है, जो पांच तत्व की दुनिया से पार एक छठा तत्व है, ब्रह्म महतत्व। किसी ने कहा सचखंड है, किसी ने कहा रूहानी दुनिया है, किसी ने कहा सातवां आसमान है, पांच तत्व छठा सूक्ष्म लोक और सातवां आसमान है। किसी ने कहा मुक्ति धाम है, मोक्ष धाम है, किसी ने कहा निर्वाण है, लेकिन हम उसको कहते हैं अपना प्यारा घर। क्यों? क्योंकि घर ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। सारी दुनिया घूम के आएंगे लेकिन अपने घर में आएंगे तो शांति, जो सुख अपने घर में और कहीं नहीं, कहते हैं ना। इसी तरह आत्मा को भी कभी कभी अपना घर याद आता है। जब बहुत दुनिया में दुख और अशांति से घिर जाते हैं तो क्या याद आता है? घर याद आता है। तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु, अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है। मोक्ष की कामना करने लगते हैं। लेकिन उसमें भी तीन प्रकार के लोग हैं दुनिया के अंदर। एक प्रकार के लोग हैं जो परमानेंट मोक्ष चाहते हैं, आना ही नहीं है, देख लिया ये दुनिया बहुत है, ऊपर ही रहना है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, जाए रेस्ट करके फ्रेश होके फिर आए, थोड़ा आराम करके आए। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो जाना ही नहीं चाहते, कहते दुनिया बहुत अच्छी है, क्यों जाना चाहिए, है ना। आप लोग क्या चाहते हैं? कितने हैं जो परमानेंट जाना चाहते, मोक्ष चाहते हैं? मोक्ष अच्छा बहुत है ये तो, है ना। जो टेम्पररी जाना चाहते, जाके रेस्ट करके फ्रेश होके फिर नीचे आए, है वो भी है। और जो जाना ही नहीं चाहते, ये दुनिया बहुत अच्छी है, क्यों जाना चाहिए, है वो भी है। लेकिन यहां मुझे चार प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। चौथे प्रकार के लोग जो अभी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं कि कहां जाना है, ये पता नहीं कौन से लोक में जाना है उनको, है ना। वास्तव में अगर मैं आपको बताऊं, परमानेंट कोई नहीं जा सकता है, मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता है। आप कहेंगे बहन जी हमको चाहिए ना, हमको नहीं रहना है इस दुनिया के अंदर अभी, लेकिन मोक्ष नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। एक बड़ा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 50-60 फ्लैट्स है और उस बिल्डिंग के नीचे एक मैदान है, खेलने का मैदान है। वैकेशन का टाइम है, सारे बिल्डिंग के बच्चे आते हैं उस मैदान में खेलते हैं। मान लो कि आप भी उस बिल्डिंग में रह रहे हैं और आपका भी बच्चा है, वो कहता है मुझे भी जाना है नीचे। आप उसको मना कर दो, नहीं जाना है, ऊपर इतने खिलौने हैं, वो बैठ के खेलो, मान जाएगा? जाना है। जब देखता है सारे लोग नीचे गए, उसके सारे दोस्त नीचे गए, तो कहता है नहीं जाना है, जिद करता है। उस समय उसको वो खिलौने अच्छे नहीं लगते हैं। आपने समझाया उस बच्चे को, देखो बेटा नीचे जो खेल चल रहा है बड़ा रफ खेल है, कोई तुझे धक्का देगा, गिरा देगा, चोट लगेगी, फिर रोएगा तुम, तो क्या कहेगा? कोई बात नहीं, जाना जरूर है ना। ठीक है, जाओ, छुट्टी दिया आपने, नीचे गया, खेल में इन्वॉल्व हुआ, शुरू में तो जीत रहा था, सारा दिन उनका खेल चलता रहा, दोपहर को खाना खाने के लिए भी बस आया, भागा वापस। जैसे जैसे शाम होती गई, वो चीटिंग बढ़ती गई उस खेल के अंदर, और शाम के समय में किसी ने जोर से उसको धक्का दिया, गिरा दिया, चोट लगी, उसको रोने लगा। आपने आवाज सुनी, क्या करेंगे? दौड़ेंगे नीचे, जाकर के सारे बच्चों को कहेंगे अब सब घर जाओ, बहुत खेल लिया। क्योंकि मालूम है जब तक सब नहीं जाएंगे तब तक खुद का बच्चा भी ऊपर आने वाला नहीं है, इसलिए सब बच्चों को भेज करके खुद के बच्चे को भी आप ले आते हैं, साफ स्वच्छ करके मलम पट्टी लगाया, कुछ खाना पीना दिया, सो जाओ। सो गया। दूसरे दिन जब वो खेल आरंभ होगा तो जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पिता ने भी हमको कहा, बेटे बैठे रहो, ऊपर इतनी शांति है, नीचे जाके क्या करना है? हमने भी क्या कहा? नहीं जाना है नीचे,
जिद किया। क्यों? क्योंकि जो नीचे गया एक भी वापस आया नहीं, माना नीचे का खेल बढ़िया चल रहा है, यही सोच लिया। हमको समझाया गया था कि नीचे जो खेल चल रहा है बड़ा रफ खेल है, धोखा देंगे, धक्का देंगे, चोटें लगेगी, दिल की चोटें लगेगी, बहुत कुछ होगा। हमने भी क्या कहा, कोई बात नहीं, है ना। और इसलिए चोला बदल बदल करके भी यही खेल करते रहे। अब जब संसार की भी शाम होने को आई, कलयुग माना शाम रात्रि का समय आया, तो चीटिंग तो बढ़ेगी। अब जब इतनी चीटिंग बढ़ गई, कोई धोखा दे रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तब बहुत तंग होकर के हम भी रोना चालू करते हैं, हे प्रभु अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है। रोना हुआ ना, ये भी एक प्रकार का, वो भी आता है, यदा यदा ही धर्मस्य, वो भी आता है। आकर क्या कहते हैं, चलो बच्चे अब सब घर चलो, बहुत खेल लिया अब चलो सब घर चलो, है ना। और इसीलिए अब आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर होलसेल मौत का प्रोग्राम शुरू हो गया है। कहीं क्या विधि से मर रहे हैं, कहीं सुनामी लहरें आ रही है, कहीं भूकंप हो रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रही, कहीं आतंकवाद चल रहा है, होलसेल मौत शुरू हो गया। क्योंकि जाना है, सबको घर जाना है, कोई यहाँ रहना नहीं है, जाकर के रेस्ट करेंगे, फिर जब नई दुनिया आरंभ होगी तो आएंगे या नहीं आएंगे, बस, है ना, फिर आएंगे। इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, इतनी आबादी कहाँ से आई, जो है वो तो है ही है, और ऊपर से भी जो बची हुई है वो भी उतर रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना, इसलिए बढ़ते जा रहे। इतने इंसान कहाँ से हो गए, पहले तो इतने नहीं थे, 100 साल पहले भी इतने नहीं थे, आज इतने, क्योंकि जो है वो तो है ही है, चोला बदल बदल करके यही है, और ऊपर से भी जो नीचे आ रही है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ना ही है ना। तो इसलिए कहा परमानेंट मोक्ष कोई चाहता नहीं है। जब भगवान भी आता ही है, वो भी परमानेंट मोक्ष में नहीं रहता, तो इंसान ऊपर रह के क्या करेगा। आज आज कोई बच्चे को आप पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, और वो अगर कहे मुझे अभी कोई काम धंधा नहीं करना, घर में बैठे बैठे खाना है, खिलाएंगे आप? अरे भाई तेरे को योग्य क्यों बनाया, इतनी तेरे अंदर शक्ति है, क्षमता है, किस लिए, घर में बैठने के लिए? तो इसी तरह आत्मा में जब इतनी क्षमता है, शक्ति है, तो ऊपर घर में बैठने लिए है क्या? तो जरूर नीचे संसार में आकर अगर उसको सही दिशा में लगाई जाए, तो वो शक्ति और क्षमता का सदुपयोग होने लगता है, और वही परमात्मा हमसे चाहते हैं, यही जीवन का उद्देश्य है। तो ये है आत्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं ना, तो 5 बातें पूरी पूछते हैं। तो आज खुद का खुद से परिचय हुआ, जिसमें ये 5 बातें आपको बताई गई। जैसे किसी व्यक्ति के परिचय में भी 5 बातें होती है, आपका नाम क्या है, फिर दूसरा नंबर, आजकल हर जगह फोटो चाहिए, वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, एड्रेस में भी 2 एड्रेस, एक टेम्पररी एक परमानेंट, परमानेंट कोई गांव होगा, और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, वर्तमान समय क्या उद्देश्य है जीवन का। तो ये 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता। तो हमने आत्मा के परिचय में भी ये 5 बातों को देखा कि जो चैतन्य शक्ति का नाम है, आत्मा, रूह, शक्ति, सोल, जो भी कहो, प्रकाश, उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, प्रकाश का स्वरूप है, ज्योति पुंज है। उसके क्वालिफिकेशन है 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। उसका एड्रेस है टेम्पररी एड्रेस, ब्रुकुटी की मध्य में, परमानेंट एड्रेस परम धाम, शांति धाम, जहां से हम आए हैं। और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो अपनी शक्ति को यथार्थ दिशा देना, सकारात्मक दिशा देना, और इन गुणों के आधार पर जीवन जीना, ये है जीवन का उद्देश्य, ये जीवन की वास्तविकता। तो ये था आत्मा का संपूर्ण परिचय। अब थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन में जो पहला प्रथम कदम है वो है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करेंगे ना, स्वस्थ होकर के सभी बैठेंगे, स्वस्थ होकर के पीठ सीधी हो। वैसे मेडिटेशन में बैठने की भी एक विधि है, लेकिन क्योंकि आज सभी कुर्सियों पर बैठे हो मेजॉरिटी, इसलिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप इस आसन में बैठो, लेकिन मेडिटेशन में बैठने का जो आसन है भारतीय संस्कृति के हिसाब से प्राचीन काल से सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ये आसन अति उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि शरीर से एनर्जी निकलने के तीन द्वार है। उसमें सबसे पहला द्वार है ये पैर, यहां से एनर्जी बहुत निकलती है। इसलिए लोग महात्माओं के पास जब जाते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे से करते हैं कि वहां से जो एनर्जी निकल रही है हमारे तरफ आए। आती नहीं है, ये खाली एक भावना है। कई लोग इसीलिए गुरु के चरणों को थाली में रख के धोते हैं और चरणामृत के रूप में उसको बांटते हैं कि जो एनर्जी है वो पानी में लिया और वो पानी पीने से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। ऐसे कोई चार्ज नहीं होती है। और राजयोग हमें ये कहता है दूसरों की एनर्जी पर कितना आधारित होंगे आप। क्यों नहीं हम वो विधि सीखे जो अपने अंदर चार्ज करे। इसलिए सबसे पहले ये पैरों को मोड़ दिया। मोड़ देने से क्या होता है कि वो ऊर्जा यहां से रुक जाती है, निकलती नहीं है। जैसे एक होस पाइप होता है पानी डालने वाला, आप बगीचे में पानी डाल रहे हो और अचानक कोई मिलने आ जाए और उसको मिलना हो आपको, तो क्या करेंगे? पानी वेस्ट भी नहीं जाना चाहिए तो पाइप को मोड़ देंगे। जैसे ही पाइप को मोड़ा तो पानी रुक जाता है। इसी तरह पैरों को मोड़ दिया, तभी मोड़ने का सिस्टम हर धर्म में है। हिंदू धर्म में सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन के रूप में मोड़ते हैं। मुसलमान धर्म में वज्रासन में बैठते हैं। क्रिश्चियन धर्म में नील डाउन करते। मोड़ने का सिस्टम है ये, हर एक का अपना अपना है ना। भाव एक ही है कि वो एनर्जी निकलनी नहीं चाहिए ईश्वर से प्राप्त करते वक्त। इसीलिए पहले के जमाने में घरों में भी सोफा सेट नहीं होता था, बैठकें होती थी। पीढ़े पर बिजनेस में भी बैठकें होती थी, खड़े नहीं रहते थे, है ना। गुरुकुल में पढ़ने के लिए बच्चे जाते, वहां भी नीचे बैठ के पढ़ते थे तो याद रहता था, बुद्धि बहुत तीव्र होती थी। और आजकल सब कुछ कुर्सी टेबल पर हो गया है ना। बच्चे पढ़ते भी है तो कुर्सी टेबल पर, तो एक तरफ पढ़ते जाते हैं दूसरे तरफ अर्थिंग हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है क्या पढ़ के आए। इसलिए अगर बच्चे की मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो नीचे बैठ के पढ़ाओ उनको। जितना उनको नीचे बैठ करके पढ़ाएंगे उतना उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। वो ऊर्जा यहां से जो ब्लॉक हुई वो ऊपर आती है, जो एकाग्रता के लिए मदद करती है, मन की एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती है। इसीलिए मेडिटेशन में जब बैठते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं, तो ये यथार्थ विधि है बैठने। दूसरा द्वार है ये हाथ, यहां से बहुत एनर्जी निकलती है। इसीलिए लोग जब महात्माओं के पास जाते हैं ना, आशीर्वाद चाहते हैं कि हाथ रखे हमारे सिर पर, कि यहां से जो ऊर्जा निकल रही है वो हमें मिले। ऐसे मिलती नहीं है, खाली एक भावना है। लेकिन इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर हाथ जोड़ने की प्रथा है। सर्किट को बंद करो, क्लोज द सर्किट, ताकि जो ऊर्जा है वो अंदर ही अंदर घूमे, बाहर ना निकल जाए। इसीलिए हाथ जोड़ते हैं, है ना। और तीसरा द्वार है आंखें, दृष्टि। इसीलिए जब भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो क्या कहते हैं अंत में, हे प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहे। यानी भगवान कृपा करता है दृष्टि द्वारा, तो रिसीव करने वाला कहाँ से रिसीव करेगा? दृष्टि द्वारा ही रिसीव करेगा। इसलिए ध्यान में आंखों को बंद नहीं करते, आंखों को खुला रखते हैं, क्योंकि अगर तीनों द्वार बंद हो गए तो एनर्जी आएगी कहां से, ऊर्जा आएगी कहां से, और भीतर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी कैसे? व्यक्ति के अंदर की भावना ऊर्जा कौन सी चल रही है उसका पता आंखों से ही चलता है। किसी की आंखों देख करके कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा गुस्से वाला लग रहा है, अरे उसने गुस्सा किया भी नहीं है, फिर कैसे पता चला? उसकी आंखें बता रही है, वो ऊर्जा निकल रही है। इसीलिए कोई व्यक्ति बड़ा शीतल शांत लग रहा है, कैसे पता चला? उसकी आंखें बता रही, बड़ा पवित्र है। तो ये वाइब्रेशन है जो आंखों से निकलता है। तो इसीलिए जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो अपने दृष्टि को एकाग्र करो परमात्मा के ऊपर, और जितनी हमारी दृष्टि एकाग्र होगी उतनी परमात्मा की शक्ति को मांगने की आवश्यकता नहीं। हे प्रभु शांति दो, सुख दो। अब बाहर खड़े रहेंगे धूप में तो सूर्य से मांगते नहीं कि तेरी गर्माइश मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं है कि तेरी शीतल हवा मुझे दे, आप खड़े रहो मिलेगी। इसी तरह परमात्मा से भी हम मांगे क्यों? मन और बुद्धि को एकाग्र करो और उस शक्ति को महसूस करो अपने चिंतन के द्वारा। इसलिए क्या सोचना है तो आत्मा के जो सात गुणों के बारे में आज आपने सुना, चिंतन द्वारा वो ऊर्जा को अपने अंदर विकसित करना है, शांति प्रेम आनंद बैटरी को चार्ज करना है, ठीक है ना? तो इसीलिए चिंतन हम आपको देते जाएंगे। पहला कदम है आत्मचिंतन का, तो आत्मचिंतन हम आपको देते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने अंदर उसको खाली रिपीट नहीं करना लेकिन महसूस करना, फील करना और उसका अनुभव करना, ठीक है? क्योंकि मन की रुचि है कि उसको घूमना अच्छा लगता है, एक स्थान पर वो बैठ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मन को चिंतन देते हुए, आत्मचिंतन देते हुए उसको उसमें लगाना है, ठीक है? तो स्वस्थ होकर के बैठ जाएंगे। अगर थक गए ऐसा लगते तो 2 मिनट खड़े हो जाओ, अपने हाथ पैर को स्ट्रेच कर लो, खड़े हो जाओ, हाथ पैर हिला लो और फिर स्वस्थ होकर के बैठो। क्योंकि नहीं तो जैसे शांति में बैठते हैं कोई दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, है ना? हमें निद्रा योग नहीं करना है, हमें राजयोग करना है, ठीक है ना? बैठ जाओ, क्योंकि सुबह सुबह बैठ के इतना सुनने का अभ्यास नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा हाथ पैर स्ट्रेच कर लेते हैं। तो फिर और अब जब बैठेंगे, जितनी तन की एकाग्रता होगी उतनी मन की एकाग्रता को ले आना सहज होगा। इसलिए तन भी एकाग्र, मन भी एकाग्र होगा। जिसको भी उठना है पहले ही उठ करके निकल जाए बाहर, बीच में कोई नहीं उठेगा, क्योंकि जिसको मेडिटेशन करना है कम से कम उसको तो हम सहयोग दे कि वो अपने ध्यान को एकाग्र करे। आपका ध्यान नहीं लग रहा है, हिलते डोलते रहेंगे, उठते रहेंगे, वो निकलते रहेंगे, तो दूसरे को भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए जिसको भी उठना है पहले उठ जाए, बाद में जब मेडिटेशन पूरा होगा उसके बाद ही उठेंगे, बीच में कोई भी उठेगा नहीं, ठीक है? बैठ जाए सभी, कोई भी बीच में चले नहीं। अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं।
अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटि के अकाल तख्त पर मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति पुंज हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जो वस्त्र को मैंने धारण किया है सृष्टि रंगमंच पर अपना पात्र निभाने, वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग हूं, न्यारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को इस देह रूपी वस्त्र से अलग कर चलते हैं एक यात्रा पर, परम धाम की ओर। पंच तत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारागण से भी पार परम धाम में जो मुझ आत्मा का असली घर है, अंतरचक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं। जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, मैं आत्मा स्वतंत्र हूं। मुक्त अवस्था में हूं। एकदम हल्कापन महसूस कर रही हूं। यहां मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूं। मेरा अनादि स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर पवित्रता का प्रकाश छाया हुआ है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित, मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मैं आत्मा अपने चारों ओर
शांति के प्रकंपन महसूस कर रही हूं। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। इसी शांति में परम आनंद है, प्रसन्नता है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। इसी शांति में शक्तियां हैं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, यही मेरी वास्तविकता है। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्ति स्वरूप हूं। कुछ क्षण के लिए अपने मन और बुद्धि को इस स्वरूप में एकाग्र करती हूं।
Thank you.
मैं आत्मा हूं, शांत हूं, सतोगुणी हूं, सर्व शक्तियों को स्वयं में समाते हुए धीरे धीरे मैं वापस इस पंच तत्व की ओर शरीर में ब्रुकुटी की मध्य में स्थित होती हूं। मैं आत्मा शरीर की सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं, मालिक हूं। अब मुझे इन गुणों को अपने कर्मेंद्रिय द्वारा प्रवाहित करना है। ओम शांति शांति।